आप हैं SBS हिंदी के साथ।
SBS हिंदी पर शाम 5 बजे सुनिए गौरव वैष्णव के साथ मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा ICU में अर्थव्यवस्था। भारत में 1.5 लाख के पास पहुंचा संक्रमित लोगों का आंकड़ा। और भारतीय हॉकी के दिग्गज बलबीर सिंह सीनियर का 95 साल की आयु में निधन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने COVID-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए श्रम बाजार और कौशल प्रशिक्षण में बड़े बदलावों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा विश्वास दिखाने और सभी उद्योग समूहों से बातचीत की इच्छा दर्शाने के लिए सरकार सीनेट में विवादास्पद तथाकथित यूनियन बस्टिंग बिल यानी इंश्योरिंग इंटीग्रिटी बिल को आगे नहीं बढ़ाएगी। नेशनल प्रेस क्लब में जॉब मेकर योजना को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि जहां नौकरी पैदा की जा रही हैं वहां देश को उन व्यवसायों के लिए बेहतर प्रशिक्षित कामगारों की ज़रूरत है। उन्होंने वर्तमान अर्थव्यवस्था की तुलना अस्पताल के एक ऐसे रोगी से की जिसे गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया हो।
You've got to get it off the medication before it becomes too accustomed to it. We must enable our businesses to earn Australia's way out of this crisis. And that means focusing on the things that can make their businesses go faster.
उधर लेबर पार्टी ने प्रधानमंत्री के श्रम सुधार पर दृष्टिकोण को मार्केटिंग स्लोगन्स करार दिया। लेबर पार्टी के उपनेता रिचर्ड माल्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री के भाषण में कई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाए हैं।
And ultimately, all we really got of substance was that the Prime Minister has booked the room. Well, that's all well and good. Now, it's fine about getting people around the table, but I think the Prime Minister needs to be upfront about what it is that he exactly is talking about in terms of industrial relations reform. When he talks about simplifying awards, what does that mean in terms of the security of workers' employment?
बढ़ते आगे, सिडनी के पूर्वी उपनगरों में छात्रों के COVID-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद 2 स्कूलों को खाली कराया गया है। न्यू साउथ वेल्स में छात्रों को पूरी तरह से कक्षाओं में लौटने के महज 1 दिन बाद ही मोरिया कॉलेज और वेवरली कॉलेज को बंद करना पड़ा है। वेवरली कॉलेज के उप प्रधानाचार्य पैट्रिक ब्रेनन ने बताया कि सभी छात्रों को घर भेज दिया गया है।
वेवरली कॉलेज हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर COVID-19 फॉर मंथ्स एंड वी हैव द प्रोसीजर्स इन प्लेस टू डिलीवर स्कूलिंग ऑनलाइन इन द इवेंट ऑफ एन एक्सटेंडेड क्लोजर।
क्वींसलैंड में भी कोरोना वायरस का एक नया मामला सामने आया है। माना जा रहा है कि ये रूबी प्रिंसेस शिप से जुड़ा है। प्रीमियर एनास्तासिया प्लाजुक ने बताया कैमर्स की ये महिला उस जहाज़ की यात्री थी और हो सकता है कि बीमार होने से पहले 12 सप्ताह तक वायरस उनके भीतर रहा हो।
We're monitoring that one very closely to work out if it's directly related to the Ruby Princess or whether it has been acquired in Cairns some other way, but at the moment we are thinking it is from the Ruby Princess.
विक्टोरिया में भी एक शिक्षक को COVID-19 से संक्रमित पाया गया है, हालांकि वो स्कूल नहीं आए थे। बढ़ते आगे और बात करते हैं कुछ अच्छी खबर की। दुनिया के दक्षिणी गोलार्ध में COVID-19 की वैक्सीन का मानव परीक्षण ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। मेलबर्न और ब्रिस्बेन में 18 से 59 साल की आयु वाले करीब 130 लोगों ने स्वेच्छा से इस परीक्षण में भाग लेने की सहमति जाहिर की है। ये संभावित टीका अमेरिका की एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी नोवावैक्स ने विकसित किया है। कंपनी के अनुसंधान और विकास के अध्यक्ष Dr. Gregory Glenn ने बताया,
I sincerely believe we have a vaccine that is going to be very good. Our technology is advanced. We've just recently completed what's called the phase 3 trial, which is one of the last stages of testing for a better flu vaccine. And so we bring to the table a very good technology, a novel way of making vaccines. It's mature, and we're excited that this can be tested here in Australia.
ऑस्ट्रेलिया में आज के दिन को नेशनल सॉरी डे कहा जाता है, एक ऐसा दिन जिसमें लोग ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समुदाय के साथ हुए दुर्व्यवहार को याद करते हैं। पहला सॉरी डे साल 1998 में मनाया गया था, जबकि ब्रिंगिंग देम होम रिपोर्ट संसद में रखी गई थी। इस रिपोर्ट में माना गया था कि एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर बच्चे अपने परिवारों से दूर हुए थे, जिन्हें स्टोलन जेनरेशन के नाम से जाना जाता है। आज का दिन महज मेल मिलाप का दिन ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन है जबकि ऑस्ट्रेलियाई लोगों को ये एहसास दिलाई जाता है कि आदिवासी और गैर स्वदेशी लोगों के बीच असमानता की खाई को पाटना कितना महत्वपूर्ण है। और अब खबरें भारत से। भारत में कोविड 19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,45,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल मामलों की संख्या 1,45,380 हो गई, जबकि इस वायरस के संक्रमण से अभी तक 4,167 जाने गई हैं। पिछले 24 घंटों में 6,535 मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की जान गई है। रिकवरी रेट भी बढ़कर 41.60% हो गया है। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन को लेकर रणनीति के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सत्ताधारी दलों शिवसेना और एनसीपी के बीच गतिरोध की खबरों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सोमवार शाम को मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सरकार मजबूत है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार की यह मुलाकात उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर हुई। एनसीपी प्रमुख के राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने को लेकर दिए गए सुझाव के बाद गठबंधन के बीच तनाव बढ़ा था। पवार का सुझाव था कि महाराष्ट्र को धीरे धीरे खोलना चाहिए और अनिश्चितकालीन बंद से उबरना चाहिए ताकि आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाया जा सके। खबरों में कहा गया था कि सुझाव को नज़रअंदाज किए जाने के चलते पवार नाराज थे। सोमवार को दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में भीषण आग की घटना सामने आई। दक्षिण दिल्ली के मुख्य दमकल अधिकारी SS तुली ने बताया कि इस आग को बुझाने के लिए दमकल की करीब 30 गाड़ियां बुलाई गई थीं। देर रात तक आग पर काबू पा लिया गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि आग के कारणों का पता अभी नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये आग गैस सिलेंडर के फटने की वजह से लगी हो।
तकरीबन जो है 30 के करीब जो है गाड़ियाँ जो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और ये झुग्गियाँ प्लस जो मटेरियल आपको सामने पीछे नज़र आ ही रहा है और सारा जो है अभी अंडर कंट्रोल के अंदर। कुछ गैस सिलेंडर्स वगैरह फटे थे यहाँ पर और कैजुअल्टी अभी कोई रिपोर्टेड नहीं है, बाद में जो है चेक करके बाद में बताया जा सकता है।
पूर्वी लद्दाख में कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है और 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद ये सबसे बड़ी सैन्य तनातनी का रूप ले सकती है। सैन्य सूत्रों का कहना है कि भारत ने पेंगोंग तत्सो और गलवान घाटी में अपनी स्थिति मजबूत की है। इन दोनों विवादित क्षेत्रों में चीनी सेना ने अपने 2,000 से 2,500 सैनिकों की तैनाती की है और वो धीरे धीरे अस्थायी निर्माण को मजबूत कर रही है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 49.74 रुपये थी और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 65 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में से एक, 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का सोमवार को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो पिछले 2 सप्ताह से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके निधन पर खेल जगत की कई हस्तियों ने शोक जताया है। उनकी मौत पर शोक जताने पहुंचे पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें भारत रत्न दिए जाने का पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि जो सम्मान उन्हें जीते जी नहीं मिल पाया वो उनके बाद ज़रूर दिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी लेटर जड़ा है वो प्रधानमंत्री जी ने लिख दिता है और मैं आस करदा कि बहुत जल्द ही जड़ी ये चीज़ है जड़ा कि इन्हां दे जिंदा दे वक्त इन्हां नूं मिलना चाहिदा सी, लेकिन सेंटर सरकार ने उहदे वल कोई तवज्जो नहीं दित्ती। लेकिन मैनू पूरी उम्मीद है कि अज उस थुड़ नूं महसूस करदे हुए जड़ा कि इन्हां दा हक बनदा है वो अवार्ड इन्हां नूं भारत रत्न दा हर हाल च मिलेगा।
सोमवार को ईद पर खेल जगत के सितारों ने भी लोगों को बधाइयां दी थीं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने ईद की शुभकामनाएं सोशल मीडिया के जरिए सभी के साथ शेयर की। इरफान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो भाई यूसुफ पठान और अपने अब्बा के साथ दिखाई दे रहे हैं। देशवासियों को ईद की मुबारकबाद उन्होंने दी है। इरफान ने वीडियो में कहा कि इस बार ईद काफ़ी सिंपल रही और हम बेहद ही सादगी के साथ ईद मना रहे हैं। भारत की टेनिस दिग्गज खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने भी ट्वीट कर लोगों को घर में ही रहकर ईद का त्यौहार मनाने की अपील की। सानिया ने ट्वीट कर लिखा कि मैं ईद के मौके पर घर में अपनों के बीच रह रही हूँ और आप भी वही करें। इसके साथ साथ सानिया ने अपने बेटे इजहान मिर्ज़ा की भी तस्वीर शेयर की है। और अब डालते हैं नज़र कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में छिटपुट बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में भी बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में भी आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में सुबह के वक्त बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में बादलों की आवाजाही रह सकती है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में धूप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी नई दिल्ली में बुधवार का दिन बेहद गर्म रहने वाला है। अधिकतम तापमान 46 डिग्री जबकि न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचारों में आज इतना ही।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।